नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान तकनीक और भारतीय प्रतिभा का मेल सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष क्षेत्र में साहसिक और महत्वाकांक्षी पहल की है। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना को मंजूरी दी। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से व्यापक क्षति हुई। जम्मू कश्मीर में लगातार चौथे दिन रेल यातायात ठप। आज 40 ट्रेनें रद्द की गई। और बैडमिंटन में महिला एकल में पीवी सिंधु और पुरुष युगल में सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी आज पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी के टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि जापान टेक्नोलॉजी का और भारत प्रतिभा का पावर हाउस है।
जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के बाद भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत निवेश के सबसे भरोसेमंद बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि जापान की कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। प्रधानमंत्री ने जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसे भी कहा। उन्होंने कहा है कि आज भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तथा नीतियों में पारदर्शिता है। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा ने कहा है कि जापान के उन्नत प्रौद्योगिकी और भारत की विशिष्ट प्रतिभा एक दूसरे के पूरक है, जो हमारे आर्थिक संबंधों को विस्तारित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की कंपनियां एक बीच में सहयोग दरवाजे पर हस्ताक्षर होना भारत में और निवेश के लिए जापान की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्कोप एमिनेशन पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि आर्थिक और वित्तीय योगदान के अलावा केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राष्ट्रीय लक्ष्यों को महत्व देता है और संतुलित और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर पहचान बना रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने असम की गुवाहाटी में आज राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गोलाघाट में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ भी किया। श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ब्रिटिश शासनकाल की भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके 3 नए कानून लेकर आई है।
ने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें विज्ञान के आधार पर एफएसएल के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया।
बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय मदद की पहल किश्त में चुनी गई प्रत्येक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रूपये दिए जाएंगे। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
मेजर ध्यानचंद को यूं ही हॉकी का जादूगर नहीं कहा जाता। उनके अद्भुत खेल प्रदर्शन से प्रभावित होकर जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने की पेशकश की, लेकिन दद्दा ने हमेशा मातृभूमि भारत के लिए ही अपने खेल कौशल को समर्पित किया। गेंद इस कदर उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि सभी को भ्रम होता था कि वे कोई जादुई स्टिक लेकर मैदान में तो नहीं उतरे, जिस पर से बॉल है कि छूटती ही नहीं। यहां तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया। जापान में भी उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। मेजर ध्यानचंद की गिनती दुनिया भर के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से होती है। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में हॉकी स्पर्धाओं में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली टीम में शामिल रहे। इनमें वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में, वर्ष 1932 में लॉस एंजल्स में और वर्ष 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल शामिल हैं।
Final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany.
1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में जब भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया तो एक अमेरिकी अखबार ने लिखा कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया कोई तूफान थी। उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने आज राजभवन ईटानगर में दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान निवास के 1900 फील्ड रेजिमेंट, डोकरा रेजिमेंट की 2 बटालियन, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 16 बटालियन, 4 कोर सिग्नल रेजिमेंट, 305 फील्ड अस्पताल और 667 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रम को राज्यपाल के प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। निवास और सेना इकाइयों को उनकी उत्कृष्ट व्यवसायिकता, तीक्ष्ण परिचालन सूझबूझ और अदम्य साहस के साथ साथ जिला प्रशासन और राज्य के लोगों के साथ विश्वास और तालमेल का गहरा बंधन बनाए रखने के लिए ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की एक वैश्विक टीम ने एक नया ऑनलाइन टूल विकसित किया है जो उच्च रक्तचाप यानी बीपी के प्रबंधन के तरीके को बदल सकता है। इससे डॉक्टर प्रत्येक मरीज के लिए उसके रक्तचाप को कम करने की आवश्यकता के आधार पर उपचार चुन सकेंगे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उधर जम्मू और कश्मीर में भी जम्मू संभाग में रेल यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू से आने वाली 40 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। प्रदेश में सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट।
अचानक आई बाढ़ और मिट्टी के कटाव के बाद पुल संख्या 17 पर कठुआ माधोपुर पंजाब डोन लाइन पर रेल यातायात पूरी तरह से स्थगित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 270 किलोमीटर लंबा हिस्सा उधमपुर जिले में जखैनी और चनैनी के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से।
इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों पापुमपारे, वेस्ट सियांग और नामसाई के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य 17 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश के येलो अलर्ट जारी किए हैं। भारतीय शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में सपाट काम कर रहे थे। सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 80,109 पर और निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,508 पर पहुंच गया। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उनका सामना पेरिस के एडिडास अरेना में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दनी से होगा। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई ये की जोड़ी से होगा। एशिया कप हॉकी के उद्घाटन मैच में आज बिहार में मलेशिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के 4-1 से हरा दिया है और भारत आज अपना पहला मैच चीन के साथ खेलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।